ओम शांति। गुड मॉर्निंग। राजयोग के द्वितीय सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में परम श्रद्धेय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी पधारे हैं। हम सभी दीदी जी का तालियों के साथ स्वागत करते हैं। दीदी जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मैं भावना बहन से अनुरोध करती हूँ दीदी का स्वागत करें पुष्प देकर के, और हम सभी फिर से तालियों के साथ दीदी का स्वागत करते हैं। राज्यों का जो द्वितीय सत्र है, परमात्मा का सत्य परिचय, हम सभी आत्माओं के पिता, परम पिता परमात्मा, उनका सत्य परिचय दीदी जी हम सबको कराएंगे। दीदी जी का परिचय अवश्य कराना चाहूंगी मैं। दीदी जी का जैसा नाम है वैसा ही दीदी जी का जीवन है। कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा न रख कर्म करते जाओ। सुख दुख लाभम लाभो जया जयो, अपनी स्थिति को सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय में समान रखो। श्रीमद् भागवत गीता की यही दो मूल शिक्षाएं ही आपका वास्तविक जीवन परिचय है। ऐसी स्थित प्रज्ञ अवस्था आपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की व्यवहारिक शिक्षा प्रशिक्षण एवं व्यक्तिगत पुरुषार्थ से प्राप्त की है। 1969 में आप 14 वर्ष की कोमल आयु में ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। आप अपने विद्यार्थी जीवन में भी अत्यंत मेधावी छात्रा थे। साउथ गुजरात मैट्रिक बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव आपने प्राप्त किया, परंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं ने आपको इतना प्रभावित किया कि 1972 में बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। गुजरात के सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान करने के पश्चात लगातार 14 वर्षों तक भावनगर में सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की है दीदी जी ने। 1993 से आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में नवनिर्मित ज्ञान सरोवर एकेडमी में रिसेप्शन आवास निवास विभाग एवं इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में 17 वर्ष तक नियमित रूप से अपनी विशेष सेवाएं दी है। साथ ही साथ आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आप विश्वविद्यालय के नियमित राजयोगी विद्यार्थी भाई बहनों, ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बहनों के सघन प्रशिक्षण प्रोग्राम के भी प्रभावी शिक्षिका हैं। आप एक कुशल राजयोग एवं सेल्फ मैनेजमेंट प्रशिक्षिका है। मुख्यालय में विभिन्न विंग्स के जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें भी अनेक विषयों पर आप व्याख्यान देते हैं, जैसे कि आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इनर वर्ल्ड एंड आर्ट ऑफ बैलेंसिंग आदि आदि विषयों पर, अनेक विषयों पर आप व्याख्यान करते हैं। आपके द्वारा लिखे गए लेख अखबारों पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। साथ ही साथ दैनिक जागरण, संस्कार एवं आस्था चैनल में आपके प्रवचन प्रसारित होते रहते हैं। तो भारत के अनेकानेक स्थानों पर आध्यात्मिक मेलों का आयोजन तथा संचालन करने का आपको विशेष अनुभव प्राप्त है। राजयोग शिविर कराने हेतु विशेष निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों में भी आपका जाना हुआ है। 1985 में सोमनाथ से दिल्ली तक चलने वाली भारत एकता युवा पदयात्रा का नेतृत्व भी आपने किया है। 1991 में आपने विदेश यात्रा भी की, जिसमें विशेष रूप से आपने यूएसए का भ्रमण किया। 1992 में आयोजित इंडो नेपाल अवेयरनेस कैंपेन में भी आपने भाग लिया। 1996 में बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग द्वारा आयोजित मुंबई इंदौर कोटा की कार रैली में भी विशेष सेवाएं दीदी जी ने दी हैं। 2006 में 2009 में आपने अमेरिका, कनाडा और लंदन तथा अफ्रीका के 6 देशों व मॉरिशस की विदेश यात्राएं कर ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग से अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया है। ऐसे इसी प्रकार अनेकानेक कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी सेवाओं द्वारा समय प्रति समय आत्माओं को ज्ञान और योग से भरपूर दीदी जी ने किया है। ऐसी महान विभूति आज हमारे बीच में उपस्थित है। तो दीदी जी, हम सबको आज का जो दूसरा सत्र है हमारा परमात्मा का सत्य परिचय, उससे अवगत कराएंगे आदरणीय गीता दीदी जी।
ओम शांति।
हम अपने आप को भूल गए हैं, पिता परमात्मा को भूल गए, हम भटक गए हैं। कोई राजा का बेटा राजकुमार भटकता हो, भीख मांगे, तो उनको देखकर आप क्या सोचेंगे कि अरे राजा का बेटा भीख मांग रहा है। लगता है राजा से कोई संबंध नहीं रहे हैं। हमारा भी उस पिता परमात्मा से प्रैक्टिकल कोई रिलेशन नहीं रहे हैं। इसलिए अब ये निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूं और परम पिता परमात्मा की अमर संतान हूं। मैं भी अपनी ओरिजिनल क्वालिटी से शुद्ध हूं, सत्य हूं, शांत हूं। अब ये अवेयरनेस हमें अपने में लानी है। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर और दाता परमात्मा के हम बच्चे हैं। हमें ये जानना है पिता परमात्मा का कौन सा कार्य है। वो कोई अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते, बीमार को ठीक कर दे, नुकसान को नफे में बदल दे, नापास को पास कर दे, ये सब काम परमात्मा नहीं करते हैं। परमात्मा वो कार्य करते हैं जो कोई मनुष्य आत्माएं नहीं कर सकती, और वो कार्य है वे हमें पतित से पावन बनाते हैं। जब सारा विश्व विकारों के पंजे में फंस जाता है, हर मानव पतित भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, तब सदा पावन परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, सत्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं और हमें पतित से पावन बनाते हैं। न जानने के कारण पावन बनने के लिए कहां कहां नदियों में नहाते रहते हैं, तीर्थों में घूमते रहते हैं, मनुष्य गुरुओं के चरण शरण में जाते रहते हैं, जबकि पावन परमात्मा बनाता है और कोई पावन नहीं बना सकता। वे हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। आज हम मनुष्य भी नहीं रहे, कहते हैं ना, शरीर से मानव है पर मानवता नहीं रही है, ऐसे कहते हैं ना। मनुष्य जानवर हैवान से भी बदतर हो चुका है। इसलिए परमात्मा आकर बताते हैं, तुम ही पतित भ्रष्ट असुर बन गए। असुर कोई अलग योनि के भयानक प्राणी नहीं है। देवताएं कोई आकाश में रहने वाले काल्पनिक नहीं है। हम ही देवताएं थे जब हम पवित्रता और दिव्य गुणों से संपन्न थे। भारत ही देव भूमि था। गाते हैं ना, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। उसी गीत की दूसरी लाइन याद होगी जिसमें बताया है, जहां हर बालक एक मोहन था, राधा एक एक बाला। कोई एक कृष्णा एक राधे की बात नहीं है। हर बालक श्री कृष्ण जैसा, हर बालिका श्री राधे जैसी थी। तभी तो इसको देव भूमि कहते हैं। जब वो दिव्य गुण और पवित्रता हम गंवा देते हैं, जन्म लेते लेते हम साधारण मानव बन जाते हैं। और जब हम विकारों व्यसनों बुराइयों के वशीभूत हो जाते हैं, हम ही असुर बन जाते हैं। असुर कोई अलग सिंग वाले, बड़ी बड़े आंख दांत वाले कोई भयानक प्राणी नहीं थे। हम ही गुस्सा करते हैं, वैर द्वेष में आते हैं, अहंकार में आते हैं। उस समय अपना चेहरा आईने में देखा है? हाँ, उस समय हम कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? असुर जैसे ही तो दिखते हैं। ऐसे दानव से सच्चा मानव पवित्र योगी हमें परमात्मा बना। और पवित्र योगी बनने के बाद हमें ज्ञान और योग का उत्तम पुरुषार्थ कर संपूर्ण मानव देवता बनना है। देवता माना संपूर्ण मानव। और न सिर्फ हम मनुष्य आत्माओं को परमात्मा देवता बनाते हैं, सारे संसार को स्वर्ग बनाते। आज ये दुनिया कलयुग में नरक बन गई। जब हम भ्रष्ट बन जाते हैं, संसार नरक बन जाता है। जब हम देवता बनते हैं, संसार स्वर्ग बन जाता है। विश्व परिवर्तन का कार्य विश्व पिता परमात्मा ही करते। और ऐसा कार्य करने के लिए स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं। कब आते हैं? सभी भारतवासी जानते हैं। कौन सा श्लोक बोलते हो? हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानीर भवति भारत। जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है, अधर्म अति फैल जाता है, तब अति का अंत करने परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। ये सभी भारतवासी जानते हैं। पर मेरा आपसे प्रश्न है, जब जब माना एग्जैक्टली कब? धर्म की अति ग्लानी कब होती है? कब होती है? कौन से युग में? कलयुग में। कलयुग का अंत अति धर्म ग्लानी का समय है। सृष्टि चक्र बताया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अति धर्म ग्लानि का समय किस युग को कहे? कलयुग, अंत अति धर्म ग्लानि का समय। इसलिए कलयुग अंत और सतयुग आदि का संधि काल, जिसको संगम युग कहा जाता है। कलयुग अंत, सतयुग आदि का संधि काल, संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग, जब स्वयं परम पुरुष परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, हमें उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम देवता बनाने के लिए ज्ञान यज्ञ की रचना करते हैं। चित्र में बताया है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव, पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ की रचना। ये ज्ञान यज्ञ है, विश्व विद्यालय है। कोई जौ घी तिल होमने वाला मटीरियल यज्ञ नहीं, ये ज्ञान यज्ञ है। परमात्मा हमें सत्य ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं, जिस ज्ञान और योग की शक्ति से खुद की बुराइयों को स्वाहा कर। इस ज्ञान यज्ञ में आप आए हैं। जो कलयुगी नर नारी इस ज्ञान यज्ञ में खुद के मनोविकारों को स्वाहा करेंगे, पवित्र योगी जीवन बनाते हैं, वे ही आने वाली सतयुगी दुनिया में देवी देवता बनते हैं। इसलिए परमात्मा का ये सत्य ज्ञान सभी आत्माओं को दिया जा रहा है। जो आत्माएं सत्य ज्ञान को समझकर जागती हैं, अपने जीवन को पवित्र योगी बनाती हैं, वे आने वाली सतयुगी दुनिया में जाने योग्य बनते हैं। योगी बनना माना सतयुग के लायक बनना। इसलिए वर्ल्ड ड्रामा में अभी जो समय चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय चल रहा है। ये महापरिवर्तन का समय है। समय के संकेत को समझकर, परमात्मा के आदेश को जो आत्माएं स्वीकार करेगी और अपने वर्तमान जीवन को पवित्र योगी बनाएगी, वो आत्माएं सतयुगी राजभाग्य को प्राप्त करेगी। परमात्मा इस समय आकर हमारे अनेक जन्मों की भक्ति भावना का फल सत्य ज्ञान देते हैं, और वही ज्ञान आप सुन रहे हैं। और लास्ट बात, परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं, मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ? जरूर परमात्मा इस दुनिया में नहीं रहते हैं, जरूर वे इस दुनिया से दूर कोई और स्थान पर रहते हैं, जहां से कलयुगंत संगम युग में अवतरित होते हैं। परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं। युगे युगे आते तो कलयुग कैसे हुआ? फिर परमात्मा ने आकर क्या किया? परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं, परमात्मा सिर्फ कलयुग अंत सतयुग आदि के संधिकाल संगम युग में आते हैं। और वे आकर कलयुगी पतित मनुष्य आत्माओं को पावन बनाते हैं और सतयुग के लायक बनाते हैं। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? जब हम परमात्मा को याद करते हैं, हमारी नजर और बुद्धि कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। हमारी नजर ऊपर जाती है, ऊपर वाला कहा जाता है ना? एक दो को याद कराते हैं ना कि ऊपर वाला देख रहा है, याद कराते हैं कि नहीं कराते? ऐसे ही कहते हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है। कोई गलत करके इस दुनिया की कॉर्ड से छूट जाते हैं तो भी क्या कहते हैं? ऊपर वाले की कॉर्ड से नहीं छूटोगे, कहते हैं ऊपर वाला। यहां वाला नहीं, यहां वाला नहीं कहा जाता है। परमात्मा इस दुनिया से दूर, पांच तत्वों से पार, परम धाम के निवासी। चित्र में सबसे नीचे आसमानी रंग से ये भौतिक जगत बताया है, जहां हम आत्माएं शरीर धारण कर कर्म करते हैं। ये कर्म क्षेत्र है। प्रकृति के पांच तत्वों से बनी ये दुनिया है, ये फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत इसको कहें। हम आत्माएं भी इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करती हैं। हमारे लिए भी ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, ये हमारा घर नहीं है। हम आत्माओं का और हमारे पिता परमात्मा का असली घर परम धाम है। चित्र में सबसे ऊपर गोल्डन रेड कलर से बताया है, अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व, हम उस ब्रह्मलोक के निवासी। जो हम आत्माओं का घर, वो ही हमारे पिता परमात्मा का घर है। दुनिया में बाप और बच्चों का घर एक ही होता है कि अलग अलग होता है? असली घर तो एक ही होता है ना, बाद में अलग अलग होते हैं। हम आत्माओं का और हमारे पिता परमात्मा का असली घर एक ही है, परम धाम। परमात्मा परम धाम निवासी है, इसलिए हम कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा काम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा धाम। ये है परमात्मा का सत्य परिचय, जो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को दिया है। ऐसे ज्ञान के सागर, सुखदाता, सदा पावन, हम आत्माओं के अविनाशी साथी, हमारे जीवन की नैया को पार लगाने वाले उस कल्याणकारी शिव पिता को हमें कितना याद करना चाहिए? कितना याद करना चाहिए? हाँ भाई तो बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ हाँ पर क्या हम इतना याद करते हैं? हाँ नहीं करते हैं, इसलिए तो बोलते नहीं हो। हाँ भूल जाते हैं, देह के मित्र संबंधियों को याद करते रहते हैं जो वास्तव में दुख ही देते रहते हैं। हाँ जो सदा सुख देते हैं देता है उनको हम याद नहीं करते। देखो कितनी आश्चर्य की बात है। तो अब खुद को आत्मा समझकर साइलेंस में बैठकर मन ही मन बहुत प्यार से उस पिता को हमें याद करना। तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। कमर सीधी करके बैठे सभी अलर्ट होके। अपना डायरी पर्स बैग फाइल साइड में रख दे, हाथ में गोद में लेके ना बैठे। एक दो से अलग अलग होकर बैठेंगे, टच करके नहीं बैठेंगे। अपनी आंखें नेचुरल खुली रहने दे। अक्सर परमात्मा को याद करने बैठते हैं लोग, आंख बंद करके बैठते और फिर नींद करते रहते हैं। इसलिए आंखें बंद नहीं करना है, आंखें नेचुरल खुली रहने दे। ना आंखें फाड़ कर बैठना है ना आंखें बंद करके बैठना है। इजी नेचुरल अपनी आंखें खुली रहने दे। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, आप मेरे मस्तक में देखेंगे। मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा है। आत्मस्मृति में बैठकर मन ही मन शिव बाबा को याद करना है। ये आपका प्रथम अभ्यास है। भक्ति में हम आवाज करते हैं, कोई आरती कोई भजन कोई कुछ, हमें आवाज नहीं करना। मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है, वो साइलेंस की दुनिया में रहते हैं। इसलिए मन ही मन कैसे शिव बाबा को याद करना है, चिंतन करना है, मन ही मन उनसे बातचीत करनी है। ये आपका प्रथम अभ्यास है, इसलिए मैं कमेंट्री देती जाऊंगी। जो विचार मैं आपको दूं वो मुख से रिपीट नहीं करना है, मन में रिवाइज करना है, अर्थ समझकर रियलाइज करना है, उस महसूसता में स्थित होना है। कुछ क्षणों के लिए सभी बातों से अलग हो जाइए। आस पास की व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से साक्षी हो जाइए। स्वयं के मस्तक बीच भ्रुकुटी में अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा चैतन्य शक्ति इतने बड़े शरीर को चलाती हूँ। मेरे लिए यह दुनिया भी कर्म क्षेत्र है। मेरा असली घर इस दुनिया से दूर 5 तत्वों से पार परम धाम है। मैं जानती हूँ पिता परमात्मा भी परम धाम के निवासी हैं। मैं मन की आँख से ज्ञान नेत्र से परम ज्योति बिंदु शिव पिता को देख रही हूँ। मेरे अति प्रिय परम पिता आपके सत्य ज्ञान को पाकर आज मुझे अति हर्ष है। मेरे मन का अंधकार आज समाप्त हुआ है। मुझे स्पष्ट है कि मैं कौन हूँ और आप मेरे परम पिता कौन हैं। जीवन का सही ठिकाना मुझे मिल गया है। मेरा यही लक्ष्य है मेरे प्यारे शिव बाबा, संपूर्ण सत्य ज्ञान जो आप हमें देते हैं, वो ज्ञान मुझे भी जीवन में धारण करना है। जिन गुण और रूहानी शक्तियों के आप सागर हैं, वो सर्व गुण और सर्व शक्तियां मुझे भी अपने जीवन में धारण करनी है। आप शांति के सागर, शांति दाता है। मैं आत्मा आपकी संतान, मैं भी शांत स्वरूप हूँ। मुझे स्वयं शांत रहना है और सर्वत्र शांति फैलानी है। प्यार के सागर शिव बाबा, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मुझे सबके साथ आत्मिक प्यार से चलना है, सबको सुख देना है। मेरे सदा पावन पिता, आपकी याद से मैं आत्मा शुद्ध बनती जाती हूँ। मैं आपसे योग लगाती हूँ, मेरे सर्वशक्तिमान पिता, आपकी याद से मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाती हूँ। मुझे यही निश्चय और खुशी है, मैं आत्मा आपकी ईश्वरीय संतान, मैं भी शांत हूँ, शुद्ध हूँ, मैं स्वयं एक शक्ति हूँ। ओम।